पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान
शांति। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता आपकी ओम शांति। अच्छी थैंक यू। आज हम सब बाबा की दी हुई उस गिफ्ट को, जिससे हम सब सामान्य लोगों से न्यारे हैं, उस पर विचार विमर्श करेंगे। योगी और भोगी में अंतर किस बात का है? योगी और भोगी में अंतर किस बात का है? पवित्रता। कुमार और अधर कुमार में अंतर किस बात का है? पवित्रता। भक्त और पूज्य में अंतर किस बात का है? बोलो बोलो बोलो, प्यूरिटी है ना, हर चीज में देखें। और अपना ईश्वरी विश्वविद्यालय सारे संसार से न्यारा है तो किस बात पर? प्यूरिटी। फिर अगर सितम सहे तो किस बात पर? प्यूरिटी। अगर संसार में रेरेस्ट समझते हैं, कीमती, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता, अगर ये धारणा है तो कौन सी? प्यूरिटी। और हमें नाज है, बाबा मुफ्त में थोड़ी आता है भारत में। भारतवासियों में पवित्रता का महत्व है, तब तो बाबा आता है भारत में। अगर कोई तपस्या करनी होती है तो भी कौन सी फाउंडेशन रखते हैं? प्यूरिटी। नवरात्रे करते हैं तो भी क्या करते हैं? प्यूरिटी। कोई भी विशेष उपलब्धि करनी होती है ना, तो उसमें पवित्रता का व्रत लेते हैं। पता है आपको? आप लोगों को पता है या नहीं? पता नहीं। कोई भी, मानो आपने कोई सिद्धि लेनी है, सिद्धि समझते हो, कोई ऐसी योग्यता जो सामान्य लोगों में नहीं होती, तो प्यूरिटी। और गुरु लोग कहा करते थे कि अगर तुमने प्यूरिटी भंग की तो तुम्हारी ये सिद्धि भी चली जाएगी। मैंने सुना है कुछ गायक कलाकार है ना, विशेष कलाकार, गायक कलाकार, नृत्य करने वाले या कोई भी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्धि अगर किसी ने उपलब्ध की है तो प्यूरिटी। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुमार है, अदर कुमार कुमार, उसने सारा जीवन किस में लगा दिया? वैज्ञानिक अन्वेषणों में, है ना, सारा जीवन उसमें लगा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी कुमार, नरेंद्र मोदी कुमार, हाँ क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी अर्ध कुमार, नहीं उसकी शादी हुई थी लेकिन वो रहा नहीं, साथ में नहीं रहा, चले गया था, मैंने जो सुना। अच्छा और सुनो, और भी हैं हमारे देश में। एक बहुत बड़ा साउंड इंजीनियर है, जाल मिस्त्री, जाल मिस्त्री, वो भी कुमार है। उससे पूछा, भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? कहता है मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। इतना व्यस्त रहता था, अभी भी इतना व्यस्त है। बॉम्बे में रहते हैं और अपना जितने भी हॉल बनते हैं ना अपने यज्ञ में, चाहे वो डायमंड हॉल है, चाहे वो हार्मनी हॉल ज्ञान सरोवर का है, चाहे अपना ये हॉल है, चाहे अपना ओआरसी का हॉल है, चाहे अपना शांति सरोवर का हॉल है, सब हॉल्स में साउंड इंजीनियर जाल मिस्त्री, बेस्ट बेस्ट। तो कहते मुझे फुर्सत ही नहीं मिली शादी करने की। ऐसे भी होते हैं, अब्दुल कलाम जी को भी नहीं मिली। तो अगर आप देखेंगे जीवन की उपलब्धि, और सच्चाई की बात यह है कि जब हम इस व्रत में होते हैं ना, पवित्रता के व्रत में, तो आपका लक्ष्य ही दूसरा हो जाता है, दूसरे लक्ष्य से। मैं अपनी बचपन की बात बताती हूँ। हमारे ज्ञान में हम लोग को 57 इयर्स हो गए हैं। जिस समय हम आए थे तो हम तो 8.5 साल के थे। पिताजी घर में ये चित्र होते हैं ना, ये समझा रहे थे। कोई एंग्लो इंडियन महिला आई थी और मैं सुन रही थी, उनको नहीं पता कि मैं सुन रही हूं। ड्राइंग रूम में सुना भी रहे थे और मैं वहीं बैठी थी सुन रही थी। तो पिताजी ने बोलते बोलते बोला कि कोई भी कन्या जब तक कन्या होती है तब तक उसकी पूजा होती है, जब शादी कर लेती है तो उसको सबके पांव पड़ना पड़ता है। तो मैंने मन में सोच लिया, उसी समय वो ब्रेन में कहीं जाके, अब 8.5 वर्ष के बच्चे को क्या पता, लेकिन ब्रेन में कहीं जाके वो सेट हो गया कि मैंने किसी के पांव नहीं पड़ना। और शादी क्या चीज है वो थोड़ी पता होता है बच्चे को, लेकिन मैंने किसी के पांव नहीं पड़ना। तो ये वो गुण है, वो धारणा है जिससे हम पूज्य बनते हैं। पवित्रता फाउंडेशन है। आप जब बिल्डिंग तैयार करते हो तो बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी गहरी डालते हो? आपको 21 मंजिल की बिल्डिंग तैयार करनी है, 21 जन्म, आपकी फाउंडेशन कितनी गहरी और कितनी मजबूत होनी चाहिए, है ना? फिर देखो मीठे भाइयों, ये हमारी चॉइस है। बाबा ने जबरदस्ती तो नहीं किया है ना कोई से, कोई जबरदस्ती तो ब्रह्मा कुमार बने हुए नहीं बैठे हो ना, अपने दिल से आए हो ना, अपनी चॉइस से आए हो। तो अपनी चॉइस से जो आए हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो क्यों नहीं, जो चीज मैंने अपने चॉइस से अपनाई है उसको मैं इतना अच्छी रीति से अपनाऊं जो मैं उसका एक्सपर्ट बन जाऊं। ये भी तो हो सकता है ना, हम उसके एक्सपर्ट बन जाएं। अब भारत के कुमार और विदेश के कुमार दोनों में कितना अंतर है। भारत के कुमार और विदेशों के, विदेशों में तो कुमार होता ही नहीं। जब बाबा के पास आने शुरू हुए ना, तब दादी प्रश्न पूछा करती थी, तब उनको पता लगा कि पवित्रता भी कोई धारणा होती है। उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था कि पवित्रता भी कोई चीज है जिसको लाइफ में अपनाना होता है। अपने देश में बचपन से इसका महत्व बताते हैं, कन्या की पूजा होती है और कई ऐसे अवसर होते हैं जिस पर इसका महत्व बच्चों को घरों में पता लग जाता है ना। घर में हमको कोई बताता है, घर में हमें कोई सुनाता है, अपने आप हम लोग सीखते हैं। तो पवित्रता वह फाउंडेशन है जिससे बाबा की एक अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा किस आधार से तुम बच्चे सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बोलो, पवित्रता के आधार से। अगर संसार में हमारे पास एक भाई आते थे दिल्ली में, कहते थे दीदी बाबा ने इतने कड़े नियम बनाए हैं, बाबा अगर पवित्रता के नियम को थोड़ा ढीला कर देना तो यहाँ पे लाखों की सभा हो जाएगी, इतना अच्छा ज्ञान है, बाबा करेगा? करेगा हा? करेगा? बाबा को लाखों चाहिए? नहीं चाहिए ना। बाबा को कितने चाहिए? मुट्ठी भर चाहिए। हम बैठे हैं, मुट्ठी भर चाहिए, कोई ज्यादा नहीं चाहिए बाबा को, नहीं तो सत्युग में भी भीड़ लग जाएगी ना, वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को पवित्रता के आधार से विश्व पर विजयी बना देते हैं। और उसी मुरली में बाबा ने कहा था कि, याद करने दो, हाँ, पवित्रता के आधार से ही तुम फास्ट भी जा सकते हो और बहुत आगे भी जा सकते हो। क्या कारण है? कोई आत्माएं बहुत फास्ट तीव्र गति से आगे चली जाती हैं और कोई आत्माएं खड़खड़ करते हुए बेचारी चल रही हैं, क्या कारण है? प्यूरिटी। अब पवित्रता क्या है? पवित्रता में दो भाग हैं, एक है ब्रह्मचर्य व्रत, और मेरा मानना ऐसा है, हमारी अगर भारतीय संस्कृति को हम देखें तो पढ़ाई कब होती है बताओ? हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत में ना, चार आश्रम बताते हैं ना, ब्रह्मचर्य व्रत, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ, चार बताते हैं ना। तो पढ़ाई का मौसम कब होता है? 1 to 25, है ना। और उस समय कहां जाता था बच्चा? आजकल तो नहीं, गुरुकुल में जाता था, सब प्रकार की बातों से मुक्त होता था, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, चाहे वो राज विद्या होती थी, चाहे कोई भी विद्या होती थी, बच्चा उसमें केवल पढ़ता था और कुछ नहीं करता था, ठीक है ना। अब हमें बताओ वो तो 100 वर्ष की आयु का है। अब ये विराट सृष्टि चक्र में अभी कौन सा वर्ण चल रहा है, बोलो कौन सा वर्ण है, किस वर्ण के हो आप? ब्राह्मण वर्ण के हो ना, तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचर्य व्रत में है। जो ब्रह्मचर्य व्रत में नहीं है वो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा मौसम पढ़ने का है। 21 जन्म तो क्या पूरे 84 जन्मों की कमाई हम इस युग में करते हैं। सत्युग में हम कमाई करेंगे, त्रेता में कमाई करेंगे, द्वापर में करेंगे, कलयुग में करेंगे। आप लोग साथ साथ बोलो, बोलने से पार्टिसिपेशन रहेगा। करेंगे कलयुग में कमाई, सब कुछ गंवाएंगे। केवल संगम युग पर कमाई करने का युग है। जब संगम युग कमाई करने का युग है तो बताओ कितना अटेंशन और फोकस रखना है, रखना पड़ेगा ना। आपको बीज बोने का टाइम 1 महीना दिया जाए, केवल 1 महीना बीज बोना है। जब किसान बीज बोता है 15 दिन या 1 महीने का टाइम होता है, उसे कुछ सूझता है? कुछ सूझता है उसको? कुछ नहीं सूझता। शादी हो, मुरादी हो, कुछ भी हो, वो कहता नहीं भाई, मेरी कमाई इस पर है, सारे साल का फाउंडेशन ये टाइम है, तो उसको महत्व देता है। ऐसे ही हमारी इस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ हमारा चल रहा है, पूरे साइकिल में, 5000 वर्ष के साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट फेज मेरा वर्तमान समय चल रहा है। जबकि मुझे इतना सारा काम बाबा ने दिया है कि 84 जन्मों की कमाई करनी है तुमने, तो बुद्धि कहीं जाएगी? जा ही नहीं सकती। श्वासों श्वास, पल पल, क्षण क्षण मुझे कमाई करनी है, कमाई करनी है, बुद्धि में रहेगा ना। तो ये मेरा पढ़ाई का मौसम है, ये मेरा कल्प की कमाई का मौसम है। जब ये बात ध्यान पे रहती है तब हमारा अटेंशन और सब बातों से मुक्त हो जाता है। पहले अपने आप से पूछो कि सच में मुझे निश्चय है कि ये पढ़ाई का मौसम है? ये पूछने की बात है। पवित्रता की धारणा मजबूत कैसे होती है? पहले तो आपको निश्चय चाहिए, और इसके ऊपर कितने कर्तव्य, कितने इसके ऊपर मिसाल है, उदाहरण है। तो हमें निश्चय है? अपने आप से पूछना, मैं हाथ नहीं उठवाती हूं, अपने आप से पूछना, मुझे पक्का निश्चय है कि यही वो युग है जिसमें मैंने 84 जन्मों की कमाई करनी है। 84 जन्मों के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ को सेट करना है। अगर निश्चय है तो फिर एक छोटी सी धारणा क्या हम अपना नहीं सकते? छोटी सी धारणा, इसको व्रत के रूप से देखो। पवित्रता व्रत है, और आप जानते हैं इतिहास भरा पड़ा है पवित्रता के व्रत के कारण मौत भी हार जाती है, पता है ना, मौत भी हार जाती है। आज मैं आपको एक घटना सुनाती हूं, सच्ची घटना है। जिन दिनों पंजाब में बहुत हलचल थी उन दिनों की बात है। हमारी एक बहन थी, वो करती थी पढ़ाती थी स्कूल में, तो टेररिस्ट जो होते थे ना, वो जो कमाई करते थे उनको बुलाया करते, तो ऐसे ही उसको चिट्ठी भेजी कि तुम फलाने दिन फलाना इतना पैसा लेके फलानी जगह पहुंच जाना। तो बहनों ने उसको पूछा क्या तुम जाओगी, उसने कहा दीदी मैं जाऊंगी नहीं तो वो सेंटर को नुकसान करेंगे, तो मैं ही चली जाऊंगी। तो वो गई, गई उसकी एक बूढ़ी मां थी, जिस बूढ़ी मां को वो कमाई जो करती थी ना वो पैसा उसको भी भेजती थी, गांव में रहती थी। तो निश्चित दिन निश्चित स्थान पर वो पहुंच गई, तो देखा लोगों ने, टेररिस्ट ने आए देखा, उनको मौका नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद वो वापस चली गई। फिर उनका पत्र आया, फिर आया आप फलाने दिन आई थी, हमने आपको देखा लेकिन हमें मौका नहीं मिला, अब आप फलाने दिन आओ इतना पैसा लेके आओ। वो फिर चली गई, चली गई तो टेररिस्ट आ गए, वो अपने साथ टोली ले गई थोड़ी सी। तो टेररिस्ट आ गए बंदूकें लेके, उसको बोला पैसा लाई हो, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं लाई, मेरे पास पैसा कहाँ है। कहा तुम जो नौकरी करती हो, उसने कहा हाँ मैं नौकरी करती हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है गांव में रहती है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, मैं उसको ये पैसा भेजती हूँ और मैं आश्रम पर रहती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ आश्रम का, तो थोड़ा मैं उसको देती हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो उनका फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है मैं तैयार। वो सड़क पर ही धरती पर, हाँ कहती है मारने से पहले मेरे को ना अपने भगवान को याद कर लेने दो। उनका कर लो, तो वो धरती पर सड़क पर ही बैठ जाती है, सड़क पर बैठ जाती है और बाबा को याद करती है। जब बाबा को याद करती है तो किसी को उससे गुरु नानक का साक्षात्कार होता है, किसी को देवी का, किसी को ज्योति बिंदु का। वो आंखें खोलती उठ के खड़ी होती है, ये सब उसके पांव पड़ जाते हैं, नहीं आप देवी हो आप शक्ति हो। किस चीज ने किया, दो चीजों ने, एक पवित्रता और दूसरी क्लियर बुद्धि बाबा की याद। तो जब वो चलने लगे ना तो कहती अच्छा टोली खा लो मैं प्रसाद लेके आई हूं, तो उनको उसने दिया, तो वो लोग पांच लोग थे, इसके पास पांच ही पीस टोली के थे, तो कहते हैं आपको कैसे पता लगा कि हम पांच आएंगे। ये एक मिसाल है। ऐसे अपने यज्ञ में अनेकों मिसाल है। सारा हापुड़ का हंगामा हुआ तो प्यूरिटी के कारण, सिंध में हंगामा हुआ प्यूरिटी के कारण, बाबा को बदनामी मिली प्यूरिटी के कारण। जो हापुड़ का हंगामा था ना उसका बहुत विस्तार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को कभी इन सब हिस्ट्री इसका पता होना चाहिए, कैसे हमारे बड़ों ने सामना किया। एक रज्जू माता थी, 60 वर्ष की होती थी वो। उसके लिए कहते थे कि ये पवित्रता के व्रत में है, इसलिए हापुड़ में पूरा हंगामा अच्छी तरह हो। वो रज्जू माता बहुत प्यार से सुनाती थी, प्योरता, उसको प्योरिटी नहीं बोलने, प्योरता, पवित्रता भी नहीं हुआ, प्योरता पर हंगामा हुआ। तो वहां पर गृह मंत्री या चीफ मिनिस्टर उस समय चरण सिंह जी थे, चौधरी चरण सिंह। तो ये केस हमारा चौधरी चरण सिंह जी के पास पहुंचा, चीफ मिनिस्टर के पास। भाई क्या बात है? बोला कि ये बहने जो है ना बहुत भ्रष्ट है, और दूसरी तरफ कहा कि ये प्योरिटी का, तो चौधरी चरण सिंह बोले दो में से एक बात बोलो, या ये भ्रष्ट है या ये वो है, पवित्रता की धारणा वाली बात है, दो में से तुम्हारी कौन सी है, तुम्हारे कहना गलत है। उन्होंने रद्द कर दिया, फिनिश्ड, हम लोग जीत गए। हमारे एक भाई को उन्होंने इसी हंगामे में, पता है आप लोग तो बिल्कुल भी ना कर पाओ, मैं आपको बता देती हूँ, चैलेंज से कह देती हूँ, बिल्कुल ना कर पाओ, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल के और गधे पर बिठा के मुंह काला करके सारे हापुड़ में घुमाया था। है कोई जो इतनी ताकत रखता है, बताओ। दूसरा, हमारा एक चीफ इंजीनियर भाई था जो कानपुर में थी, वो वहां से हापुड़ में, पहले तो थोड़े होते थे ना, तो कहीं पर कुछ होता था तो सब तरफ से सब लोग मदद के लिए पहुंच जाते थे। तो चीफ इंजीनियर भाई को ये गधा होता है ना, गधा, गधे के पीछे वो डुगडुगी लगा के, डुगडुगी होती है ना वो लगा के, ड्रम्स लगा के बहुत सारे, और उसको सारे शहर में घुमाए और तालियां बजाते थे। चीफ इंजीनियर, ऐसा सामना किया है किस लिए? प्यूरिटी के, प्यूरिटी। सिर्फ इसी बात के कारण तो हंगामा होता है ना, और तो कोई भी बात नहीं, और तो सारी बातें हमारी ज्ञान की कितनी अच्छी हैं, सिर्फ इस बात के कारण। क्यों? क्योंकि दुनिया खुद जैसी है, वो चाहते कि हम भी उन जैसे बन जाए। हम उनसे न्यारे बनते हैं तो कहते तुम कहां जा रहे हो, आ जाओ इधर विषय वैतरणी नदी में। हम जाएंगे, हम बाबा के स्वच्छ पवित्र निर्मल शक्तिशाली बच्चे कितने शुद्ध लगते हैं, और हम बच्चे थोड़े उसमें जाएंगे। अब आप लोग यंग एज में हो, मेजॉरिटी में देख रही हूं यंग एज में, हम लोग भी तो बड़े हुए ना यज्ञ में, तो हम बड़े हुए ना, आप लोगों की एज क्रॉस की है ना हमने। हम लोगों को कहते थे भाइयों से बात नहीं करना, हम कहे क्यों नहीं करना बात, भाइयों से बात करने में क्या गलत है? तो फिर समझाती थी दादियां, तुम बात करोगे फिर ये होगा। हमने कहा कुछ नहीं होता हमको, हम पक्के हैं तो हमको कुछ नहीं होता। लेकिन प्यारे भाइयों, बुरा नहीं मानना, लेकिन आपको मैं वास्तविकता बताती। बाबा ने, आज मैंने एक मुरली पढ़ी, पुरानी मुरली, बहुत अव्यक्त बाप दादा की। बाबा ने कहा कि दो कारणों से इसमें कुमार ढीले पड़ते हैं, एक प्रभावित होना और दूसरा रहम आता है। एक प्रभाव में आ जाते हैं, उसके बाद लगाव वो नेक्स्ट हो जाता है, और रहम। फिर तीसरे वाले को मैं अभी नहीं टच करती हूं, वो है संस्कार। संस्कार मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद कराना, मैं सबका बताऊंगी। तो प्रभावित होना। मुझे याद है 1969 में हमारी कन्याओं की भट्टी हुई थी। कौन सी कन्याएं थी? जो कॉलेज की कन्याएं थी, हम लोग कॉलेज पढ़ते थे। हमारे ग्रुप में शीलू बहन, मुन्नी बहन, आरती बहन, ये सब हम एक ग्रुप के हैं। चंद्रिका बहन, हम सब एक ही ग्रुप के हैं। हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते पढ़ते हम लोग आए थे, भट्टी हुई थी, पहली भट्टी 69 में। वो जो भट्टी हमने की ना, तो उसमें जगदीश भाई ने क्लास कराया, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड थे सब लोग। दादियों के क्लास बड़े स्ट्रांग धारणा वाले होते थे, तो जगदीश भाई ने आकर के जो क्लास कराया, क्लास के भिन्न भिन्न, वो तो इंटेलेक्चुअल थे और बड़े एनालिसिस से अच्छी तरह उन्होंने क्लास कराया। तो हम सब ने चंद्रमणि दादी को बोला, दादी जगदीश भाई का क्लास और होना चाहिए, और होना चाहिए। दादी हैरान हो गई। दादी कहती है कि तुम लोग सब प्रभावित हो गई। हमने कहा इसमें क्या प्रभावित होने की बात है, हमको उस प्रोफेसर का क्लास अच्छा लगता है, हम डिमांड करते हैं, इसमें प्रभावित होने की क्या बात है। इनोसेंट आंसर था ना। लेकिन फिर हमें क्या पता ये दादियां कितनी गहरी बाबा की पालना ली हुई है। दादियों ने हम लोगों को बैठ के फिर क्लास कराया, बोला ये प्रभावित होना है। आज तुम उसके गुण पे प्रभावित हुई हो, कल को उस पर प्रभावित हो जाओगी। फिर यहां थोड़ी छूटे हम, फिर क्लास हुआ और जब मैं छुट्टी ले रही थी तो मेरे को दादी जानकी ने कहा क्लास में जाके ये पॉइंट सुनाओ, न प्रभावित होना है और न प्रभावित करना है। आप समझे, न इम्प्रेस होना है किससे, इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस अलग चीज है, इन्फ्लुएंस, न इन्फ्लुएंस में आना है, न किसी को इन्फ्लुएंस करना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? नहीं समझ रहे तो हाथ खड़े करो। समझ रहे ना? मेजॉरिटी जो ना समझे, मैं कुछ नहीं कह रही, जो ना समझे वो मेरे पास आ जाना बाद में। तो जो कहां थी, प्रभावित नहीं करना है। अब हमने क्रॉस क्वेश्चन किया, आप भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे को। क्रॉस क्वेश्चन क्या किया, क्या दादी कोई अच्छा भाषण करता है और हम उसको अप्रिशिएट करते तो प्रभावित होना है? ये तो हमारी दिमाग में बैठती नहीं है बात। तब दादियों ने समझाया कि प्रभावित होना उसको कहते हैं जब तुमको वही अच्छा लगे और कोई ना अच्छा लगे। आज बाबा की मुरली थी ना, ब्रह्मणी वाली आज की मुरली थी ना, बस मुझे तो यही टीचर चाहिए। क्यों चाहिए भाई यही टीचर? आपका मुरली सुनने से काम है, भगवानो वाच, कोई भी सुनाए, यही सुनाए, वो क्यों? तो एक तो ये चीज, तो प्रभाव में ना आना है और ना प्रभावित कर। कई लोग होते हैं ना, औरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि नेता बने और मेरे पीछे चार छह लोग चलते रहे। ना वो करना है और ना ही वो करना है, दोनों नहीं करना है। अब मैं आपको मम्मा की बात बताती हूं। यहां पर मम्मा की जब भी महिमा करते थे ना, तो मम्मा कभी भी महिमा एक्सेप्ट नहीं करती थी। मम्मा तुरंत कहती थी मेरी चमकीली मां को याद करो। हमने तो मम्मा के लिए गीत भी बनाए, मम्मा से वार्तालाप करते थे, रूरुहान करते थे, मम्मा के साथ बोटिंग करते थे, मम्मा इतना खिलाती थी, गेम्स कराती थी, हारमोनियम बजा के म्यूजिकल चेयर कराती थी, मम्मा से बेहद प्यार होता था सबका। लेकिन मम्मा अपने में किसी को भी फंसने नहीं देती थी, ये विशेषता मम्मा की थी। और समझो कोई अगर ज्यादा मम्मा के पास जाता था ना, तो बाबा पता ही क्या कहता था, बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा कहता था ये ना मम्मा की मुरीद है। कौन सुनेगा ये टाइटल, मम्मा की मुरीद है। वो सतर्क हो जाते थे कि मेरी एक्टिविटी में कोई बात ऐसी है जो कि ऐसी नजर आ रही है, तो प्रभाव में भी नहीं, किसी के ऊपर इतना न्योछावर भी नहीं, और न ही मैंने किसी को अपने ऊपर प्रभावित करना। ये पॉइंट हमें समझ में आई। जब कभी कोई चीज आपको प्राप्त होती है, तुरंत ट्रांसफर कर दो बाबा को, तुरंत ट्रांसफर कर दो। बाबा के कारण हम ज्ञान किसका सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अपना ज्ञान है, बाबा का है, बाबा ने दिया है ना। आज बाबा के ज्ञान को मैं सुनाती हूं और उसकी सारी प्रशंसा मैं स्वीकार करूं, ये तो अमानत में खयानत हो गई। माल उसका, माल तो उसका है ना, तो इस बात का परहेज रखना होता है। पवित्रता में एक प्रभाव, ना खुद प्रभावित हो ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करो। दूसरा, प्यारे भाइयों, आप सब कुमार बैठे हो, अब एज हमारी तो ज्यादा हो गई, हम तो समझते हैं, लेकिन हम आपके दिलों को जानते हैं। कुमार कहां पर मार खाता है पता है, रहम आता है उसको, किसी ना किसी पे रहम आ जाता है ना, कन्या पे। आप चेक कर लें। इसलिए बाबा सदा कहते हैं रहम नहीं कर। उस दिन की मुरली थी रहम दिल पर। अब रहम दिली एक गुण है। अब मानो मैं आपसे बात करती हूं, आप सेंटर पर जाते हो, सेंटर पर जाते हो, आप देखते हो वहां बड़ी दीदी भी है, छोटी दीदी भी है, बिल्कुल छोटी दीदी भी है, मंझली दीदी भी है। बड़ी दीदी बहुत अच्छी है, मंझली दीदी जो है ना बड़ी कड़क है, और जो छोटी दीदी है वो बिचारी सहन करती रहती है। अब आपका अटेंशन रहम कहां जाता है, कहां जाता है, छोटी पे जाता है ना, छोटी पे चला जाता है। अब क्या कारण है, कोई भी आत्मा अपना कारण बताती है, कोई अपना कारण नहीं बताता। अब आप कुमार हो, उसको कोई चीज चाहिए, आप कुमार हो, आप कहें तुम चिंता ना कर मैं तेरे को मोबाइल ला दूंगा, होता है ना, मैं मोबाइल ला दूंगा, कभी भी तुम ना जब जरूरत हो ना, तुम ये नंबर है मेरा, इस पे फोन कर देना, मिस्ड कॉल दे देना। बस अब क्या होता है, आपने तो किया रहम। अब वो जो पौधा बाबा के घर में लगा वो मजबूत नहीं होगा। उस पौधे में जो अपनी शक्ति ग्रोथ की होनी चाहिए वो नहीं आएगी। आप देखो जब छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, उंगली पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, उंगली छोड़ भी देते हैं, बच्चा अपने आप चले। कभी बच्चा गिरता भी है, फिर उसको खड़ा कर देते हैं, फिर कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग वास्तव में, शायद मैंने कल बताया था या कहीं और बताया था, हमारा काम पढ़ाई से है। बीच में पढ़ते पढ़ते जब हम प्रशासन में इंटरफियर कर लेते हैं ना, घर में घुस जाते हैं, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। फिर देखो, अभी आपको दीदी ने देख लिया कि आप उसके साथ बातचीत करते हो, वो आपके साथ बातचीत करती है, दीदी आपको अब बोलेगी तो सही ना, कि बाबा के घर में ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए ना, बोलेगी। अब आप क्या कहते हो? ठीक है, वो भी कहती है ठीक है, मेरा नाम लगाएगा, अब तो मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगी। और कुमार भी कहता अब तो मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। इसको हम क्या कहेंगे? पढ़ते पढ़ते हमने गलत गली ले ली ना। अब आपका सारा ज्ञान ध्यान, आप सब अनुभवी होंगे या नहीं होंगे तो मैं चेतावनी दे रही हूं, आपका सारा ज्ञान ध्यान उड़ जाएगा। आप कहो मैं बाबा से योग लगाऊं, उससे योग नहीं लगेगा, वो जो बहन है ना उससे योग लगा। सच्ची बात है ये। फिर क्या होता है, और बढ़ती है बातें, बढ़ जाती हैं, फिर मन खिन्न हो जाता है। एक दिन बाबा के घर से पांव खिसक जाता है। ये रहम दिली का नुकसान हुआ। बाबा कहता है रहम दिल बनो, पहले अपने ऊपर रहम दिल बनो, अपनी कमी कमजोरी को देख लो, वहां रहम दिल बनो, उसको करेक्ट करो, उसके बाद संसार को परिचय दो, ये हमारा काम है। ठीक है, फिर अगला होता है संस्कार। कई कुमारों के संस्कार होते हैं, संस्कार पुराने होते हैं, जिस पर मेहनत नहीं करते हैं ना, तो वो संस्कार फिर उनके पक्के होते हैं। संस्कारों को खत्म करने के लिए तपस्या चाहिए। क्या करते हैं? अभी क्या सुनाऊं आपको, आज एक से बनी, कल दूसरे से बनी, परसों तीसरे से बनी, लाइफ में यही, ये तो ये लाइफ नहीं है ना भाई, ये काम करना है तो दुनिया बहुत है ना। घर में पवित्र शिव शक्तियां रहती हैं, हमने उनको आप भाई हो, प्यारे भाइयों आप भाई हो, आपको नाज होना चाहिए अपनी बहनों के ऊपर, बहनों को बल दो। कभी अगर वो थोड़ी सी कमजोर भी पड़े ना कि देखो मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा होता, नहीं, सब सहन करो बहन, जितना तुम सहन करोगी उतनी तुम शक्तिशाली बनोगी। ये काम आपका है, आपकी अपनी लौकिक बहन अगर कमजोर पड़े तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? उसको कहोगे चल छोड़ दे, कहोगे बोलो, मजबूत बनाओगे ना उसको? ऐसे ही हमारी प्यारी बहनें जो हिम्मत रख करके सेंटर पर आती हैं, शिव शक्तियां हैं, देवियां हैं, ऐसे ही उनको देखो। और कभी कोई, मैं नहीं कहती आपका दोष होता है सारा, दूसरी तरफ से भी होता है, अगर कहीं पर कोई ऐसी बात हो ना, खड़े हो जाओ, नहीं बहन, ये अपनी मर्यादा की पढ़ाई के अनुकूल नहीं है। इतनी शक्ति अपने अंदर धारण करो। उसके लिए क्या करो वो मैं बताती हूं। एक चीज है, आपको विशेष रूप से, क्योंकि ये पवित्रता हीरा है और माया सबसे ज्यादा अटैक इस पर ही करती है, ये पवित्रता आपके लिए जीवन का अमृत है और माया मासी इसको ही लेना चाहती है। उसके लिए नंबर वन, अपना फुल अटेंशन पढ़ाई पर, अपने आप को बिजी रखो। सभी कुमार अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रखोगे ना फुर्सत ही नहीं है। सुना ना जाल मिस्त्री की बात, अब्दुल कलाम जी की बात, फुर्सत ही नहीं मिली। बिजी का तो कितनी सेवा है, कितनी सेवा है, मनसा सेवा भी है, वाचा सेवा भी है, कर्मणा सेवा भी है, अपने घर की भी सेवा है, आपके लौकिक घर में भी तो है ना। बैलेंस रखो। यहां मैं आपसे ये चाहूंगी, कई कुमार ऐसे करते हैं सवेरे से लेकर शाम तक सेंटर पर ही रहेंगे और कहीं नहीं, नहीं बैलेंस रखो। घर में माता पिता को भी संतुष्ट करो, उनकी भी प्यार से सेवा करो, सेंटर की भी, मतलब अपने आप को 24 घंटे बिजी रखने का प्लान बनाओ। ये मैंने बाबा से संगम युग पर मांगा था वरदान, जब समर्पण की बात हुई कि मेरे को समर्पण करना है, दादी कुमारका ने, प्रकाशमणि दादी, उन्होंने बचपन से देखा था तो मेरे को कहती थी समर्पण जल्दी, मैं कहती थी नहीं दादी, अगर आप मेरे को इतना बिजी रख सकते हो कि मुझे लगे दिन में 24 घंटे की जगह 26 घंटे होने चाहिए, तब मैं समर्पण करूंगी। बाकी साधारण काम, दो जनों को मुरली सुना दिया, घर साफ कर दिया, खाना बना दिया, कहा ये तो मैं नौकरी करते भी कर सकती हूं, मैंने जॉब किया है, मैंने कहा ये तो मैं नौकरी करते भी कर सकती हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे इतनी सेवा दीजिए। तब दादी ने मुझे विधि बताई। दादी ने कहा आशा कभी 24 घंटे ऐसी सेवा नहीं भी होती है, भाषण की, क्लास की, कोर्स की, मुरली की, तुम जाओ किचन की सफाई करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा के घर की जितनी हम सेवा करते हैं ना, वो बाबा का घर हमें अपना महसूस होता है, अपनापन आता है जब हम कर्मणा सेवा करते हैं। तो कोई ना कोई सेवा आप ले सकते हो, बाबा के भंडारे की क्लीनिंग ले सकते हो महीने में एक बार, बाबा या 15 दिन में एक बार, बाबा के रूम की ले सकते हो, क्लास हॉल की ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सेवा लो जिससे आपको बाबा से प्यार लिंक जुड़ा रहे। लेकिन अपन को बिजी करो, एक बात। दूसरा, मैं बाबा का वह बच्चा हूं जिसको बाबा ने सारे संसार में से चुना है। आप लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन आप ब्रह्मा कुमार जब और लोगों के साथ खड़े होते हो ना, आप लोगों की चमक ही और होती है, आप लोगों का चेहरा और होता है, आप लोगों की चाल चलन न्यारी होती है। वो क्या करेंगे, आप लोग महसूस करते हो, ये करते हो? मैं तो बहुत महसूस करती हूं, अपने कुमार जो हैं हमारे बाबा के लाडले कुमार, जब सामान्य दुनिया की लाइन में खड़े हो जाएं तो न्यारे नजर आते हैं। उस चीज को आप सुरक्षित रखो, ये बाबा की गिफ्ट है आपको, इसको आप संजो के रखो। अब संजो के रखने के लिए भगवान ने आपको जन्म दिया, बाहर नहीं, जन्म दिया किसको, आपको दिया, तो जरूर बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, उसने कुछ सोच समझ के ही तो आपको चुना होगा, फालतू तो नहीं चुना ना उसने, कुछ सोच समझ के चुना आपको। बुद्धिमानों की बुद्धि गलत हो सकता है, ये अपन में फेथ रखो, आत्मविश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, मुझे भगवान ने चुना है, मुझे कौन हिला सकता है, मैं वो अंगद हूं, मैं वो हनुमान हूं, मुझे कौन हिला सकता है। ये आत्मविश्वास, भगवान का चुना हुआ कुमार हूं, भगवान का चुना हुआ रतन हूं, और कुमार हूं, आपको नशा हो, बाबा कहता कुमारियां जो हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम, कुमार 700 कुमारियों से ऊपर, सात कन्याओं में एक कुमार होता है ना, सात कन्याएं जब पूजा होती है ना नवरात्रि में ही, तो सात कन्याएं होती हैं और एक कुमार होता है सिर्फ लैंकड़ा, एक ही होता है। तो 700 कुमारियों से ऊपर हो आप, इतने बलवान हो। यस, इतने शक्तिशाली बाबा के लाडले बच्चे हो आप। इस चीज को संजो के रखना है, ठीक है। फिर और जो संस्कार की बात कही मैंने, संस्कार को जीतने के लिए तपस्या करो। एक बिजी रहना है, दूसरा तपस्या करो। तपस्या में ही विशेष रूप से एक तो मौन व्रत से शक्ति मिलती है, अंतर्मुखता आती है, गंभीरता आती है, मन शांत चित्त होता है, परखने की शक्ति अच्छी होती है, निर्णय बुद्धि अच्छी बनती है और आपका व्यवहार उत्तम होता है मौन व्रत वाले का। तो अपने साथ आप ये संकल्प करके जाना इस बारी कि मैंने मौन व्रत धारण करना है, सप्ताह में चाहे एक दिन करो। मैं नहीं कहती रोज, मैं इस बात को नहीं मानती हूं, बैलेंस हमेशा अच्छा रहता है। सप्ताह में एक दिन मौन रखो बस। दूसरा, सप्ताह में एक दिन विशेष रूप से अमृत वेला 4 से 4:45 करते हो ना, एक दिन 3 से 5 करो। एक दिन। तीसरा, शाम को योग होता है ना, हमारे अमृत वेला होता है, क्लास का होता है, शाम का योग होता है, रात्रि का होता है, इसको भी अपना कंप्लीट चार्ट करो। दिनचर्या अपनी ऐसी बनाओ जो कि आपका ये सारा सिस्टम सेट हो जाए, अमृत वेला, क्लास, ये सब प्रकार सेट हो जाए, ठीक है। इससे जितना मेरा मानना ये है कि आपका अनुभव से सुना रही हूं, अगर आपके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है लेकिन अगर आप नियमों की पालना करते हैं ना, तो वो जो नियम है वो आपको शक्ति देते हैं, पक्का। जैसे कोई चीज होती है ना, मानो किसका फ्रैक्चर होता है, वो चल नहीं सकता है, जब प्लास्टर खोलते हैं चल नहीं सकता, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहता है, नहीं आपको इतना समय 15 मिनट चलना ही पड़ेगा, बोलता है ना, 15 मिनट चलता है, धीरे धीरे करके उसका वो खुल जाता है और ठीक हो जाता है। ऐसे ही नियमों की धारणा, नियमों को तोड़ना नहीं, नियम आपके लिए सुरक्षा है। देखो बाढ़ लगाई जाती है ना, को बगीचा लगाते हैं तो चारों तरफ बाढ़ लगाई जाती है ना, बाढ़ समझते हो, फेंसिंग की जाती है ना ताकि बगीचा सुरक्षित रहे। ऐसे आपकी दिव्यता, पवित्रता, आपके गुण सुरक्षित रहे, तो वो कौन सी बाढ़ है, नियमों की बाढ़ है, ठीक है। फिर एक ये हुआ बिजी रहना, नियमों की धारणा, पर्सनल तपस्या, मौन व्रत, और उसके साथ साथ अपना जो आपकी बड़ी टीचर है ना, उसके साथ कनेक्शन अच्छा रहो। आमतौर पर छोटों के साथ हम कनेक्शन अच्छा रखते हैं, बड़ों को अवॉइड करते हैं, वो काम नहीं करो। बड़ों से कनेक्शन अच्छा रखो, बड़ों से कनेक्शन अच्छा रखने से अपना चार्ट लिखो, चार्ट लिख करके दीदी को बताओ, जो आपको प्रॉब्लम आती है दीदी को सुनाओ। दीदी को सुनाने से दीदी आपको डायरेक्शन देगी, दीदी आपको क्लैरिटी देगी। अच्छा, दीदी आपको कहती है देखो भाई एक बात है, आप ना ज्यादा बहनों के साथ लूज टॉक नहीं करो। अब देखो कुमारों, आप सब जानते हो, ये सब कॉमन बातें हैं। आप चेक करो मोबाइल पर आपका कितना समय जाता है। साइंस ने मोबाइल दिया किस लिए? ताकि आपका काम तुरंत का तुरंत हो जाए, इसलिए ना। लेकिन मैं मोबाइल किस लिए यूज कर रही हूं ये सोचो। तो गलत उसमें मैंने यूज नहीं करना। अधिक बातें मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। समय नहीं है ना, समय होता तो हम कर लेते, समय ही नहीं है। बात से बात की फिनिश्ड। और फिर आप सबको पता है मर्यादाओं में बहनों के साथ लूज टॉक नहीं करनी है, बहनों के साथ बातें नहीं करनी है, बहनों के साथ नहीं करना। मैं ये रखती हूं मन में, भाई बहन का हमारा रिश्ता है, बहनों से बात करना कोई बुरी बात नहीं है, बहन भाई हैं। हाँ, जो बुरी बात है उसको आप भी समझते हो, वो नहीं करनी है। बाकी बहन भाई बात क्यों नहीं करेंगे? मैं कभी मना नहीं करती हूं बहन भाई बात ना करो, क्यों नहीं करें? हमारा दैवी रिश्ता है, इतना प्यारा संगम युगी हमारा रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, हम आपस में बात क्यों ना करें? हाँ, रूहानी बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे। इतना दम होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको पवित्रता में मदद देगी। फिर देखो आगे, मुझे नहीं पता आप लोग देखते हो, फिल्म्स देखते हो, सीरियल्स देखते हो, या इंटरनेट से जो चीज आती है, मैं अपने मुख से बोलना भी नहीं चाहती, कभी वो भी देख लेते हो, तो आप मुझे बताओ आपकी बुद्धि चंचल होगी या नहीं होगी? अगर आप ये देखेंगे, ये सब फालतू की चीजें देखें, आपकी बुद्धि चंचल नहीं होगी क्या? कौन सा ऐसा बैठा है जिसकी बुद्धि बिल्कुल सब ऐसी उठपटांग चीजें देखे और कहे मेरी बुद्धि चंचल नहीं होती? ध्यान जाता है, बुद्धि विचलित होती है, फिर खुद पर लज्जा आती है, पश्चाताप होता है। हमने ये नहीं देखना। एक ही चीज, जिस गली में मैंने जाना नहीं उसका पता क्या पूछना? हमने नहीं जाना ना उस दुनिया में, जाना है कोई की मर्जी है उस दुनिया में जाने की। आग से धधकती हुई दुनिया, विषय वैतरणी नदी वाली दुनिया, कांटों का जंगल जहां बदबू ही बदबू है, जाना है कोई ने? कोई ने नहीं जाना। जब कोई ने जाना नहीं है तो वो सब बातें जो उस दुनिया के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं, हमने वो नहीं करना। कई पोर्नोग्राफी देखते हैं, कई ऊटपटांग चीजें आती वो देखते हैं, नहीं। आप कौन हो? अपने सोमान को देखो, आप कौन हो? सनत कुमार, संत। दुनिया में ऐसा बच्चा कोई नहीं है आपके जैसा। संघ के रंग में संकीर्ण। इसलिए अपना संग उसका करो जो आपको ऊंचाइयों पे ले जाए, अच्छे रास्ते पे ले जाए। उसका संग मत करो जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए। Hear no evil, see no evil, talk no evil, do no evil, think no evil. No to negativity. नहीं, बिल्कुल नहीं करो। अरे भाई तुम मेरे को कहां ले जाना है, इधर आ जा, उस रास्ते पे नहीं जाना। ठीक है, फिर कभी भी अपने टीचर्स का ऑपोजिशन कुमारो नहीं करना। आप बताओ बाबा की भुजाएं हो, बाबा की भुजाएं हो सभी, हाथ खड़े करो जो समझते हम बाबा की भुजाएं। वाह शाबाश, जोर से ताली तो बजाओ। बाबा की भुजाएं सदा बाबा के कार्य में सहयोगी है ना, है ना? तो इस भट्टी में वायदा करना अपने आप से, हम कभी भी ऑपोजिशन की लाइन में खड़े नहीं होंगे। ऑपोजिशन की लाइन में कौन होता, कौन था? कौरव, पांडव थोड़े थे, सच्चे थे, एक तरफ थे, है ना? ऑपोजिशन में तो नहीं जाना ना कोई को, कोई ऑपोजिशन में, हमेशा बड़ों का कहना मानते हुए। नहीं तो ये चीजें एक गलती करते हैं ना, मैं सब अनुभव से सुना रही हूं आपको, एक गलती करते हैं ना तो वो हजम होती है, तो और बड़ी गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हजम कर लेते हैं तो तीसरी बड़ी गलती के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे 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 वो सारा बिल्कुल रूप रेखा बदल जाती। इसलिए मैंने पहली गलती ही नहीं करनी है। पहली गलती करते हैं तो तुरंत क्लियर कर, दीदी मेरे से गलती हो गई, ये बात हुई, आप मुझे करेक्शन दो, गाइडेंस दो, जो भी दो, लेकिन कभी भी ऑपोजिशन लाइन में नहीं जाना। हम बाबा के बच्चे हैं, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं, नया संसार बना रहे हैं। चिड़िया की कहानी सुनी आपने? मैं ज्यादातर सुनाती हूं अपने भाषण में। कहते एक बार जंगल में आग लगी, आग लगी तो एक चिड़िया थी, वो जाती थी चोंच भर पानी भरती थी और जाके जहां आग लगी थी वहां पर छिड़क देती थी। तो एक कौवा देख रहा था उसको, कौवा बोला मूर्ख चिड़िया, तेरे चोंच भर पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया बोली मैं नहीं जानती आग बुझेगी या नहीं, मैं इतना जानती हूं जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, चुप करके देखने वालों में नहीं, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में है। हम भी आग बुझाने वाले, ठीक है ना? कहीं पर अपने सेंटर पर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो अपना काम आग लगाना नहीं है, आग बुझाना है। आपको कोई बात समझ में आती, कोई देखते हो बात, दीदी को बताओ, दीदी थोड़ी संभाल करना, ये बात ऐसी है। तो आप आग बुझाने वाले बन गए ना, फायर फाइटर बन गए ना, बाबा हमको फायर ब्रिगेड कहते हैं ना, ये काम करना। ठीक है, अब आपको मैं एक कहानी सुनाती हूं जो बहुत साल पहले मैंने सुनी थी, लेकिन वो बहुत हमारे लिए लाभदायक है। किसी ने मुझे कहा वो कहानी जरूर बताना। वो कहानी है, एक बार पांडव श्री कृष्ण के साथ घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, घूमने समझ लो, घूमने जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देखो मैं तुमको ले तो चल रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां मैं ले जाऊंगा तो वहां पर तुमने जाकर के कोई फल नहीं तोड़ना। कहा ठीक है, नहीं तोड़ेंगे। अब ये पांचों पांडव तैयार हो गए, चलने लगे, चलने लगे तो श्री कृष्ण जी भी साथ में, तो द्रौपदी जो थी वो भी इनके साथ चल पड़ी, क्योंकि एक ही परिवार है, तो द्रौपदी भी चली। हाँ, उसने ये कहा था कृष्ण जी ने कि एक तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, एक शर्त ये थी कि एक पीछे मुड़ के नहीं देखना, और दूसरा जहां मैं ले जा रहा हूं वहां से तुमने फल नहीं तोड़ना। ठीक है, हम कर लेंगे। अब क्या हुआ, जब वो चल रहे थे तो द्रौपदी भी आ रही थी। अब द्रौपदी जो जा रही थी तो उसके पायल की आवाज आती थी तो पांडव समझ जाते थे कि द्रौपदी आ रही है, लेकिन द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं देते थे। फास्ट चल रहे होंगे ना पांडव, द्रौपदी अकेली धीरे बिचारी जा रही थी, तो उसको द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे। तो द्रौपदी ने क्या किया, वो पीछे आ गई, मुड़ गई, वापस आ गए। पांडव चले गए आगे, ये वापस आ गई। आ गई तो अपने घर में गई, घर में गई तो वहां पे नहा धो के छत के ऊपर जाके बैठी, छत के ऊपर जाके बैठी तो वहां से करण, करण इनका कजन था ना, दानवीर करण, करण युद्ध के लिए तैयार होकर के निकल रहा था, युद्ध की पोशाक पहनी हुई, घोड़े पे सवार और बहुत स्मार्ट, और वो निकल रहा था। तो द्रौपदी के मन में ख्याल आया, कितना शूरवीर लग रहा है, बात पूरी हो गई। अब वहां बगीचे में क्या हुआ, बगीचे में ये लोग घूमते रहे, फिर वो भीम जो था ना उसको भूख लग गई, तो भीम को भूख लग गई तो उसने फल तोड़ लिया, तोड़ लिया तो उसको याद आ गया, अरे भगवान ने तो मना किया था फल नहीं तोड़ना, अब क्या करूं। तो उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर जो बहुत बुद्धिमान था उसको कंसल्ट करता हूं। तो उसको गया कंसल्ट करने, युधिष्ठिर बोले, भाई ये तो गलती हो गई, अब क्या करें। तो युधिष्ठिर ने भी अपना दिमाग लगाया, ठीक है पहले ना हम ये फल भगवान को स्वीकार करा देते हैं, भगवान खा लेगा तो हम भी खा लेंगे। तो गए श्री कृष्ण जी के पास, बड़े प्रेम से फल लेके गए, खुशी खुशी कि भगवान स्वीकार करिए। तो भगवान बोले कि ये फल क्यों तोड़ा। कहा भगवान भोग लगा रहे हैं। कहा भगवान बोले, आज्ञा क्या थी, आज्ञा थी फल नहीं तोड़ना, तो तुमने क्यों तोड़ा। अब जाओ और जहां से ये फल तोड़ा है ना वहां पर इसको लगा के आओ। अब फल लगता है। अब ट्राई किया बेचारे भीम ने, सब ने, पांडवों ने, आए अर्जुन वो निशानेबाज, उन्होंने भी लगाने की कोशिश की, नहीं लगा वो आज्ञा नीचे। तो पांडवों को ख्याल आया कि हमारे साथ तो, हाँ भगवान बोले कि ये फल वो लगा सकता है जो बिल्कुल पवित्र है। तो कहा कि हमारी द्रौपदी है, हम द्रौपदी को ले आते। तो द्रौपदी को ले आए तो द्रौपदी तो सती सावित्री, उसने भी यूं किया और फल नीचे आ गया। द्रौपदी रोए धोए, हे भगवान मेरी इतनी इंसल्ट, मेरी अपने पांडवों के आगे मेरी इतनी बेइज्जती, हे धरती मां तुम फट जाओ और मैं उसमें समा जाऊं। भगवान बोले, द्रौपदी रोने का कोई फायदा नहीं है, ये बताओ आज्ञा क्या थी। आज्ञा थी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम पीछे मुड़ी? मुड़ी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? करते करते श्री कृष्ण उसको उस पॉइंट पे ले आया जहां उसके मन में ये ख्याल आया था कि ये कितना शूरवीर लग रहा है। ठीक है, प्रभाव में आई ना? गई, फिनिश्ड। तो ये कहानी किसकी है? कोई द्रौपदी हुई थी, कोई ऐसा कृष्ण हुआ था, कोई ऐसे पांडव हुए थे? हुए थे। कौन थे वो? कौन थे वो? हम सब बैठे हैं ना, ये हमारी कहानी है, हमारी कहानी। इस कहानी से हमें देखो क्या क्या मिलता है। एक, श्रीमत का पालन करना है। जो श्रीमत मिलती है ना उसमें कल्याण होता है, कल्याण होता है। जो कहेंगे सो कर लेंगे। अब कई बार, हाँ मैं एक मम्मा की बात भी सुनाना चाहती हूँ, मुझे याद कराना अगर मैं भूल जाऊं तो। एक श्रीमत का पालन, दूसरा जो कोई पर भी प्रभावित नहीं हो। हम कभी कभी किसी के गुणों पे प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बस जैसे मैंने सुना है ना, हमें तो जगदीश जी का ही क्लास चाहिए। ये सच्ची घटना बताई हम लोग ने कहा था, हम सब उसमें सम्मिलित थे, हम सब एजुकेटेड कन्याएं थी। हमने बोला हमें केवल जगदीश जी का क्लास चाहिए, क्योंकि दादियां तो धारणाओं की बातें बताती है ना, तो वो थोड़ी स्ट्रांग लगती थी, लेकिन जगदीश जी एजुकेशनल बात बताए तो अच्छी लगती थी। तो हमने कहा, तो दादियों ने भाषण कर दिया और इतना हमको सिखाया, कभी किसी से इन्फ्लुएंस में नहीं आओ। आपको बात अच्छी लगती है ना, किसी की भी बात अच्छी लगती है ना, तो इसको किसने सुनाया? बाबा ने, है ना? वो याद रखो, बाबा नहीं भूलना चाहिए। बाबा साथ रहेगा ना तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। और एक बात और बता दूं, हम ही वो बच्चे हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा भाषणों से प्रत्यक्ष नहीं होने वाला, बाबा कोई और सेवाओं से प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सबके पास साधन है। कौन सा साधन है? हमारा चेहरा, हमारा चेहरा साधन है। इस चेहरे के द्वारा किसी को साक्षात्कार होगा ज्योति बिंदु का, किसको साक्षात्कार होगा श्री कृष्ण का, किसको साक्षात्कार होगा देवी माता का, किसको किसका, किसको किसका, किसके द्वारा? हमारे चेहरे के द्वारा। अब मैं आपको एक माता की बात बताती, यंग माता, बड़ी सॉफ्ट नेचर की। उसे बोलना नहीं आता, भाषण करना नहीं आता, लेकिन उसने क्या कहा? हम लोग कहते ना, हमें चांस थोड़ी मिलता, हमें चांस मिले तो हम भाषण करें ना, हमें चांस मिले तो हम लाखों को बना दें बाबा का। हमें चांस नहीं मिलता, कई बार ऐसे कहते हैं। परंतु उस बहन की बात मुझे मन में लग गई। वो क्या बोली? कहती, मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे भाषण नहीं आता, मुझे ज्ञान सुनाना नहीं आता, लेकिन आपने जो ये कहा है कि अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करो, बाबा ये मैं अवश्य करूंगी। और वो कर रही है। उसके चेहरे से लोग जो हैं प्रभावित होते हैं, उसके बोल से प्रभावित होते हैं, कर रही है। अगर वो कर सकती है, आप इतने शुद्ध पवित्र भोले ब्रह्मा कुमार नहीं कर सकते क्या? कर सकते, हम भी कर सकते ना, अपने चेहरे और चलन पर, खुशनुमा चेहरा, रूहानियत से भरा चेहरा, ठीक है। और कभी भी बाबा ने कहा अगर दिखाई देवे ना, किसी की चमड़ी दिखाई दे ना, समझो ये सांप है, देह सांप है, मणि को देखो, आत्मा को देखो। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास खूब करो, लेकिन ऐसे नशे में नहीं चढ़ जाना जैसे कई बार बैठते ना तो बस वही चढ़े रहते हैं ऊपर ना। बैलेंस से चलो, हमेशा बैलेंस से चलो, नहीं तो फिर ऐसे ढीले ढाले घूमेंगे जैसे पता नहीं क्या ना। बैलेंस से चलो ना, ज्ञान से चलो, बैलेंस से चलो। कई कुमार ये भी सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको कौन संभालेगा। आप क्या समझते हो, जो आपको बुढ़िया मिल, जो आपको मिलेगी वो बुढ़िया नहीं होगी क्या? अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो वो भी तो बुढ़िया होगी, फिर कौन समय पे संभालते रहना एक दूसरे को। इसलिए वो बातें, वो चक्कर नहीं सोचना कि ऐसे उसका इलाज निकल सकता है। हर बात का इलाज निकल सकता है वार्तालाप से, बातचीत करके। अब मैं लास्ट बात मम्मा की बता के समाप्त करती हूं। मम्मा जैसे कई भाई लोग जो बहुत एजुकेटेड होती हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, बहुत अच्छी ऐसी होती है ना, तो उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे कुमार भाई लोग, ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग तो बैंगलोर से आए थे, बैंगलोर में तो इंग्लिश बोलते हैं, तो कुंज दादी हमारी टीचर थी, हमको कहती है कि सभी कन्याओं को, खास मेरे को नहीं, सबको बोलती है, 69 की बात है, उस समय जमाना और था, आज जमाना और है, 69 में हमको कहती है तुमने इंग्लिश नहीं बोलनी। क्यों नहीं बोलनी दादी, हमारी तो पढ़ाई इंग्लिश में होती है। कहती नहीं, तुमने स्टूडेंट इंग्लिश में नहीं समझाना। तो कहा क्यों भाई, क्यों नहीं समझाना इंग्लिश में, को वो तुमसे प्रभावित हो जाएगा। कहा दादी लेकिन उसको हिंदी समझ में नहीं आए तो क्या, उसको कहना तू अपनी मां से अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोलता है ना, तो हिंदी तुम समझ नहीं सकता। ऐसे हमको दादियां पक्का कराती थी। खैर हम लोगों की तो बैंगलोर की बात, मद्रास की उसकी बात तो अलग थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी बोलते हैं ना, तो वहां पर भी कई लोग अंग्रेजी के प्रभाव में आ जाते हैं। अंग्रेजी ये बोलती है तो ये जरूर अच्छी पढ़ी लिखी है, मैंने उसी से कोर्स करना है, वही मुझे समझा सकती है अच्छा, वो मेरी बात को अच्छा समझ सकती है। तो दादियां हमको पक्का कराती थी, ना ऐसा नहीं, फंसना नहीं तुम, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, लेकिन तुमने क्या बोलो, फंसना नहीं। आपको भी कह रही हूं, ऐसे ऐसे शिकारी आएगा, माया शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं, ठीक है। तो मम्मा से एक दिन चाचा जी है ना, ब्रजोन भाई के फादर आनंद चाचा, आनंद चाचा एक दिन मम्मा को बोले, मम्मा करोल बाग में आई हुई थी, बोले मम्मा वो किसी ऑफिसर को मुरली, हाँ उनको ही किसी बहन ने मुरली सुनाई। तो चाचा जी तो एजुकेटेड थे, तो मुरली सुनाई तो वो आनंद नहीं आया होगा, तो मम्मा के पास गए, मम्मा को बोले मम्मा बहनों को ना थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए, थोड़ा उनको संस्कृत का इसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। मम्मा मुस्कुराई, मम्मा ने कहा चाचा जी ये बताओ, जो इस बहन ने त्याग किया है वो आप कर सकते हो? बोले ना मम्मा मैं तो नहीं कर सकता। मम्मा ने कहा बस तुम उसका और कुछ नहीं देखो, वो त्याग देखो। इसलिए हम हैं त्यागी, तपस्वी, वैरागी। कुमारों, यहां रहना है इस दुनिया में, रहना है इस दुनिया में, रहना है। जिसको रहना है वो हाथ खड़े करो, जिसको इस दुनिया में रहना है नोट करो। रहना है नहीं रहना ना, बस अब हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। चंद्रमणि दादी कहा करती थी, वो जहाज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी आप भी क्या कहोगे, हम जा रहे हैं। पुरानी दुनिया हमारे काम की नहीं है, इस दुनिया में हम रहने योग्य नहीं। सच में हमारे काम की है, देखो तो हम कितने शुद्ध बच्चे बाबा के, और दुनिया तो देखो कैसी है। हम जा रहे हैं, पक्का वैराग, जा रहे हैं, जा रहे हैं। पीछे वाले जा रहे हैं, सब सब चल रहे हैं। जिनके हाथ नीचे हैं वो कैमरा खींच रहा है, हाँ? अच्छा, क्लियर हुआ, सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इन सब को परिवर्तन करने का साधन पढ़ाई है। बिजी रहना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का। और आत्मिक में आत्मा हूं आत्मा मत देखो, एक दूसरे को आत्मा हूं आत्मा हूं ऐसा नहीं देखो। ये ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु, उसको घूरते रहो, वो नहीं। लेकिन ये शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, गुणवान है, मेरा प्यारा भाई है, ऐसे करके देखो, रूहानियत में देखो। ओके, ओम शांति।